बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक छोटा सा वॉइस क्लिप बना रहा हूँ जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी हमें कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, और इसके अलावा साल स्प्लिट जो है वो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में किस तरह होता है और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में किस तरह होता है। तो इसके अलावा हमें ये भी डिस्कस करना है कि इलाइजा कैसे होता है, इलाइजा के अंदर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, और बायोप्सी प्रोटोकॉल भी थोड़ा सा हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है कि इंट्राइपिटल में ब्लिस्टर जिस तरह पेम्फिगस वल्गैरिस से, और एक हमारे पास है सब इपिटल में ब्लिस्टरिंग जिस तरह बुलस पेम्फिगस। अच्छा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस दोनों में होती है, लेकिन एक चीज़ है जो साल्ट स्प्लिट वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ सब इपिटल में ब्लिस्टर में होती है, क्योंकि वहाँ पर ही लेमिनल लूसीडा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए साल्ट स्प्लिट वाला मैकेनिज्म जो है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो आपके इंट्राइपिटल ब्लिस्टर में नहीं होता। अच्छा, एक और बात जो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए पहले से, प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी क्या होती है। प्राइमरी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन के साथ हाथ मिला रही होती है। वो प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो पेशेंट की भी हो सकती है, और वो फ्लोरेसेंट मतलब नॉर्मल भी हो सकती है और पेशेंट की भी हो सकती है। अच्छा, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जिसके साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं डाइटैक्ट एंटीबॉडी। वो मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरेसेंस पैदा करती है एक स्पेसिफिक कलर, और उस कलर उस जो कलर इसके साथ अटैच होता है मॉलिक्यूल का, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट FITC। वो मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप के साथ देखना पड़ता है जिसको कहते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अच्छा, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट जाता है, वो इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, और जवाब में मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक कलर लाइट इमिट करता है। उस कलर लाइट को देख के हमें पता चलता है कि भाई कोई अंदर एंटीजन एंटीबॉडी ने हाथ मिलाया हुआ है, ठीक है। और यही फर्क होता है मेन इलाइजा में और इम्यूनोफ्लोरेसिस में, कि इम्यूनोफ्लोरेसिस में हम माइक्रोस्कोप के जरिए कलर को देखते हैं, और इलाइजा में हम माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते, उसमें हम ग्रॉसली जो है सोल्यूशन का या जो भी है उसका कलर चेंज हम ग्रॉसली देखते हैं नेकेड आई से। अच्छा, इसके अलावा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात हो जाए, तो जब डायरेक्ट की बात आ जाए इसका मतलब है कि स्किन बायोप्सी ली गई है, पेशेंट का जो सैंपल है वो स्किन बायोप्सी है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि पेशेंट का सैंपल जो है वो सीरम है, ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसिस में क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसिस में पेशेंट की स्किन बायोप्सी ली, लेकिन हम पेरिलिनियल बायोप्सी लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंटीजन चाहिए पेशेंट का, हमें पेशेंट की एंटीबॉडी नहीं चाहिए, हमें पेशेंट के एंटीजन चाहिए। लीजन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो उन्हें सब कुछ डिस्ट्रॉय किया होगा, हमें सिर्फ इंटैक्ट एंटीजन चाहिए, तो हम पेरिलिनियल स्किन ले लेते हैं, और एंटीबॉडी हम अपना यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। अच्छा, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और हमें इस माइक्रोस्कोप जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी उसमें देखेंगे तो कलर इमिट करेगा। अच्छा, इसके अलावा हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या करते हैं, उसमें जो स्पेसिमन है वो ज़रूरी है। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में पेशेंट का स्पेसिमन जो है वो सीरम होगा, जो एंटीजन है वो आपका अपना होगा कि क्या यूज़ करते हैं। इसमें हम देखना ही है कि हमें चेक करना क्या है, हमें अगर डिस्मोग्लैन 1 चेक करना है जो कि स्किन में ज़्यादा होती है, तो हम उसके लिए जो एंटीजन या आप सबस्ट्रेट समझ ले वो हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल ह्यूमन स्किन, वो सबकी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। अगर हम डिस्मोग्लैन 3 यूज़ करना चेक करना चाहते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी चेक करना चाहते हैं, तो हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे वो ईसोफिगस, मंकी ईसोफिगस या कोई भी इंसान की ईसोफिगस हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हम पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ हैं जो अगेंस्ट डिस्मोग्लैन 3 है, तो वो हम डिस्मोग्लैन 3 ईसोफिगस के ज़रिए उसको एक्सपोज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस के लिए स्पेसिफिक है वो हमारे पास है रेड ब्लेडर, रेड ब्लेडर का ट्रांजिशनल एपिथीलियम। क्योंकि रेड ब्लेडर के ट्रांजिशन एपिथीलियम में हमारे पास डिस्मोग्लैन 1 और 3 नहीं होता, तो अगर रेड ब्लेडर हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा अगर एज ए सबस्ट्रेट हम यूज़ करेंगे और पेशेंट का सीरम होगा, तो अगर पेशेंट पेम्फिगस वल्गेरिस का होगा या जो भी होगा, तो वो उसमें ये इसकी हमें फाइंडिंग नेगेटिव आएंगी, क्योंकि डिस्मोग्लैन 1 और 3 तो उसमें है ही नहीं। तो वो स्पेसिफिक है पेरेनीप्लास्टिक के लिए कि उसमें जो बाकी एंटीजन्स हैं और खासतौर पे जो सभी एपिडर्मल वाले हैं वो भी उसमें हैं, क्योंकि हमारे पास पेरेनीप्लास्टिक में डिस्मोग्लैन 1 और 3 होते हैं, जो कि पेम्फिगस वगैरह पेम्फिगस फोलियेशियस में भी पेम्फिगस वो ये सारे तकरीबन होते हैं। तो पेरेनीप्लास्टिक में हमारे पास जो स्पेसिफिक होते हैं वो डिस्मोग्लैन 1 और 3 के अलावा वो डिस्मोकोलिन भी है, इन्वोप्लेकिन पेरिप्लेकिन और BP230 ये सारे हैं। तो इसलिए रेड ब्लेडर जो है वो स्पेसिफिक है पेरेन्यूप्लास्टिक, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका कंफर्म पता चल जाएगा कि ये पेरेन्यूप्लास्टिक ही है, क्योंकि वो पेम्फिगस फोलियेशियस में जिसमें हमारे पास डिस्मोग्लैन 1 होता है उसमें भी नेगेटिव होता है, और पेम्फिगस वल्गेरिस में जो कि 1 और 3 दोनों होते हैं उसमें दोनों में ये नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हमने रेड का ब्लेडर ले लिया फॉर एग्जाम्पल पेरेनीप्लास्टिक लिया, कोई भी स्पेसिमेन ले लिया और पेशेंट का सीरम ले लिया, जब वो आपस में वो उसको वो करेंगे, अगर उनमें कोई एंटीबॉडी होगी पेशेंट की सीरम में तो एंटीजन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वो फिक्स हो जाएगा, इसको कहेंगे हम ऐसा करेंगे कि उन्हें हाथ मिला लिया, ठीक है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी उन्हें हाथ मिला लिया तो हम उसको वॉश करेंगे कि जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया या जो उसके रिलेटिव नहीं है उसके उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो बफर सॉल्यूशन से हम वॉश करेंगे। वॉश करने का मकसद यही है कि वो वहां से निकल जाएं और जो ने हाथ मिलाया है वो रुक जाएं, और इसके बाद हम उसको उससे देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें फ्लोरेसेंस नजर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंटीबॉडी रुक गई है। अगर हम वॉश नहीं करेंगे उस सोल्यूशन को तो एंटीबॉडी तो वैसे भी होगी, तो वो हर सूरत में हमें फ्लोरेसेंस आएगा, तो वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चाहते हैं कि वो एंटीबॉडीज जिन्होंने हाथ मिलाया वो रुक जाए और बाकी अगर कोई है तो वो चली जाए। इसके बाद हमारे पास है साल्ट स्प्लिट। साल्ट स्प्लिट का मतलब ये है कि हमने साल्ट स्प्लिट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उसका मैकेनिज्म मतलब दोनों का प्रोसीजर ये है कि आपने बायोप्सी ले ली। अच्छा, साल्ट स्प्लिट में बायोप्सी ले लेते हैं, उसको 5 ml नॉर्मल सिलन में डाल लेते हैं 24 to 48 आवर्स। हमें ये मान जो करना है कि उसमें हमें स्प्लिट जो आर्टिफिशियल स्प्लिट हमने प्रोड्यूस करना है वो हमने प्रोड्यूस करना है उसमें साल्ट स्प्लिट में, क्योंकि उसमें ये हम सभी एपिडर्मल ब्लिस्टर्स के लिए करते हैं, आर्टिफिशियल स्प्लिट होता है उसमें पहले से स्प्लिट नहीं होता और वो लेमिनल लुसिडा के लेवल पे होता है। अच्छा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में क्या होता है, इनडायरेक्ट साल्ट स्प्लिट इन डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस इन साल्ट स्प्लिट इन इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस। फर्क यह है कि अगर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में जो स्किन हमने ली थी वो हमने मरीज से ली थी, मरीज का पेरिलिजनल स्किन ले लिया, उसमें स्प्लिट नहीं था और उसमें हमने स्प्लिट प्रोड्यूस किया और उसके बाद जो है प्रोसीजर बाकी वही है। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में हमने साल्ट स्प्लिट किया, उसमें हमने स्किन ले लिया लेकिन वो हमने मरीज से नहीं लिया, वो हमने एक नॉर्मल इंसान से लिया और स्प्लिट प्रोड्यूस किया और बाकी मैकेनिज्म वही है जो कि हमने ऑलरेडी इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में बता दिया। तो फर्क ये है कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस में स्किन मरीज का था, इनडायरेक्ट में स्किन जो है वो नॉर्मल इंसान का था। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे इलाइजा पे। अच्छा, इलाइजा जो है वो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसिस के लिए भी सॉरी इलाइजा जो है वो एंटीजन मालूम करने के लिए भी होता है और एंटीबॉडी मालूम करने के लिए। अच्छा, इलाइजा जो एंटीजन मालूम करने के लिए होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इलाइजा, और जो एंटीबॉडी के लिए होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलाइजा। डायरेक्ट इलाइजा में क्या होता है, सबसे पहले हम डायरेक्ट इलाइजा करते हैं, उसमें हम एक सस्पेक्टेड एंटीजन मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी है और वो स्पेसिफिक है जो हमने सेलेक्ट किए हैं कि इसके खिलाफ एंटीजन है तो पता चल जाएगा। तो हमने एक बर्तन ले लिया, एक पॉट ले लिया, उसमें हम और एंटीबॉडीज हमने फिक्स कर लिए, उसके साथ अटैच हो गई। अटैच करना या फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको वॉश करेंगे इस बर्तन को और एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह इसके साथ मिलाने के बाद, तो जिन्होंने हाथ मिलाया है वो रुक जाए बाकी निकल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने एंटीबॉडीज पहले से फिक्स कर ली स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडी फिक्स कर ली अगेंस्ट डिस्मोग्लैन 1। अब हमें एक सस्पेक्टेड सीरम ले लिया उसमें, या कोई भी सीरम नहीं कोई भी सोल्यूशन ले लिया जिसमें एंटीजन है, वो एंटीजन हमने उस बर्तन में डाल दिए। अब अगर वो उसके उसके लिए स्पेसिफिक है तो वो हाथ मिला लेंगे वरना वो ऐसे ही बर्तन में रहेंगे। अब हमने इसको वॉश किया कि अगर हाथ मिलाया हुआ है तो रुक जाए वरना निकल जाए। अब हमने क्या किया, एक और किस्म की एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी,
फ्लोरेसेंट वाली, इम्यूनो फ्लोरेसेंस में हम जो एंटीबॉडी डालते थे वो था फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। यहाँ पे जो हम एंटीबॉडी डालेंगे उसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। वो एक खास एंटीबॉडी होती है जिसके साथ एक एंजाइम अटैच होता है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो इसी एंटीजन के साथ अटैच होगी अगर ये मौजूद होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वॉश किया। तो अगर वो एंटीजन, अगर वो एंटीजन ऑलरेडी जो हमने पहले एंटीबॉडी फिक्स की थी उसके साथ अटैच हो गई थी, तो ये वाली एंटीबॉडी जो एंजाइम वाली है ये भी उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब एक एंटीजन है उसके साथ दो किस्म के एंटीबॉडीज अटैच हैं, एक वो वाली जो फिक्स थी और स्पेसिफिक है उसके लिए, और एक एंजाइम लिंक्ड। तो अब दोनों एंटीबॉडीज जो डायरेक्ट एंटीजन के साथ अटैच है इसलिए दोनों प्राइमरी हैं, इसमें कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं है। एक एंटीजन के साथ दो एंटीबॉडी अटैच है। अब हमें मालूम करना है कि भाई, अब हमने दोबारा वॉश किया, दोबारा वॉश इसलिए किया कि अगर एंटीजन नहीं था और उसके साथ एंटीबॉडी अटैच नहीं हुई है, एंजाइम लिंक की बात हो रही है, तो वो अगर फ्री एंटीबॉडीज है एंजाइम वाली तो वो वॉश हो जाए। वॉश करने के बाद अगर एंटीबॉडी अभी भी मौजूद है, पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक कलरलेस जो है सबस्ट्रेट डालेंगे जो एंजाइम के लिए होगा। जो अभी हमने आखिरी एंटीबॉडी डाली उसके ऊपर एक एंजाइम फिक्स था, उस एंजाइम के सबस्ट्रेट के लिए हम एक कलरलेस सबस्ट्रेट उस सॉल्यूशन में डालेंगे जो हमने ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज ये सारे कॉम्प्लेक्स इसमें डालेंगे। अब हमें ग्रॉसली चेक करना है कि कलर चेंज होता है कि नहीं, इस हर किसी का अपना अपना कलर होता है, नेकेड आई से देखेंगे कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब ये कि एंजाइम वाली एंटीबॉडीज मौजूद थी और वो इस वजह से इसी सब्सटेंस के साथ ने वो किया, रिएक्शन हो गया कलर। अच्छा, एंजाइम वाली एंटीबॉडी इसलिए मौजूद थी क्योंकि हमने वॉश किया उसके बाद ये मौजूद थी, इसका मतलब है कि वो एंटीजन के साथ अटैच थी, और एंटीजन इसलिए था कि वो जो पहले हमने फिक्स एंटीबॉडी पहले स्टार्ट में फिक्स किया था उसके साथ वो अटैच थी, तो इसलिए सारा सब चीजें मौजूद है इसलिए कलर चेंज हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसिस में क्या होता है, सॉरी इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, उसमें हमने पेशेंट से सीरम लेना है। उस सूरत में हमने इसी बर्तन में एंटीजन को फिक्स किया जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि ये फिक्स एंटीजन है। पेशेंट से हमने सीरम ले लिया, उसमें सस्पेक्टेड एंटीबॉडीज हैं वो उसी एंटीजन के साथ अटैच हो गई। अच्छा, अब हमने क्या किया कि सॉरी, अब हमने दोबारा वही जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज हैं वो भेज दी, और